यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री रामकुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन सुख पंचमी 21 सितंबर 2047 श्री कृष्ण संगत 5216 तदनुसार दिनांक 19 फरवरी 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन धाम में हुआ। राम
परली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो बाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो कोई कहे धूरत पाखंडी कोई कहे अनाड़ी कोई कहे धूरत पाखंडी कोई कहे अनाड़ी कोई कहे मतलब को पको कपट करण हुसी यारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो एजी कोई कहे मतलब को पको कपट करण हुसी यारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ जी कोई कहे फिरे मोड़ों में छोड़ी दुकानदारी कोई कहे फिरे मोड़ों में छोड़ी दुकानदारी कोई कहे बण्यो निर्मोही दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो ए जी कोई कहे बण्यो निर्मोही दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी ओ कोई कहे मुफत को खावे इज्जत गमाई सारी कोई कहे हाँ कोई कहे मुफत को खावे इज्जत गमाई सारी कोई कहे मुफत को खावे कोई कहे अचंभो आवे पार पड़े ली कैया थारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो ये जी कोई कहे अचंभो आवे पार पड़ेगी कैया थारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो ओ कोई कहे भगत बन बैठो, कोई कहे संसारी, कोई कहे भगत बन आदर मान करे बड़ कोई, कोई तो देवे मुख गारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो ये जी आदर मान करे बड़ कोई, कोई तो देवे मुख गारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो बाहरे कर ली सांवरिया जी सो यारी, तो दुनियादारी कुछ भी कहो बाहरे कर ली सांवरिया जी सो
प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्रे गोपाणने ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कलसुतानूरुवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतिदभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो स्वर्णात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुकमले नारायण। हम जो दुनिया की धारणा पर अपनी इज्जत और बेइज्जत समझते हैं, ये गलती की बात है। ध्यान देकर सुने आप लोग, दुनिया अच्छा कहे तब तो हम अच्छे हैं, और दुनिया बुरा कहे तो हम बुरे हैं, ये कसौटी बिल्कुल गलत है। अपने हृदय को तो बोलना चाहिए कि हम भगवान के सामने कैसे हैं, वास्तव में हमारा जीवन कैसा है। शास्त्र की दृष्टि से, भक्तों की दृष्टि से, व्यवहार की भी क्रिया की दृष्टि से हमारा जीवन अगर ठीक है तो दुनिया चाहे संपूर्ण ही हमारी निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, कोई परवाह नहीं। और हमारा जीवन ठीक नहीं है भीतर से, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हमारे आचरण नहीं है, तो दुनिया चाहे कितनी महिमा करे, कितनी ही अच्छी बात कहे, हमारी महिमा करे, तो उस महिमा का कुछ मूल्य नहीं है। उगरे यंतन हो निभाऊ काल में जिन रावण राहू, अंतिम बात उभरे की सच्चा हो सच्चा ही निकलेगा। कितनी कोई बुराई कर रही, कैसी बुराई कर रही, पर वो कुछ नहीं कर सकेगी। अस्तमा की फिर से अगर बुरा है तो भाई वो फिर कितने नहीं मांग रहे लोग, तो उसमें कुछ नहीं। कीचक बाली कठिन पुरुरवा ओ पविपानी लंपट भय लंकेश जूत खाया जग जानी पीथल जयचंद प्रगट मार खाई रण मीठी नौरोजी परनार दिल्ली गड़ गई शादी थी आंख खोल देखो अरे जगतन शोभा जानरी कोटरा कोट डेह के अगटारा चोट लगी व्यविचारी। तो भीतर से व्यविचारी थे वे कितनी ठीक हो जाए कुछ नहीं है। हमने एक बात सुनी है कि मुसलमानों का इतिहास एक लिखा जा रहा है उसमें कहते मुसलमानों ने बहुत बढ़िया काम किया बड़ा अच्छा काम किया राज्य बड़ा अच्छा किया ऐसी पुस्तक लिखी जा रही है अभी ऐसी मैंने सुनी कहां तक सच्ची है भगवान जाने सुनी मैंने जरूर इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कितनी बढ़िया बना रहे परंतु उनकी काली करतूत छिपेगी थोड़ी। रावण कितना विद्वान था बहुत बड़ा विद्वान उनकी एक रावण संहिता है जैसे भृगु संहिता है इस तरह से रावण और कुंभकर्ण का संवाद है श्लोकबद्ध है बहुत बढ़िया पुस्तक है। उसमें अगर कैसे होगा कैसे नहीं ये वर्णन हुआ। अभी कोई प्रश्न करे तो उसका नाम गांव बाप बता जाति सब बता देगा ऐसे इस जाति का ऐसा इसने किया और उसमें ये प्रश्न करेगा इसका ये उत्तर है। गोरखपुर से हम कहीं जा रहे थे तो बीच में वो गांव आ गया नाम मेरे को याद नहीं रहता गांव आ गया तो मैंने सुना कि यहाँ रावण संहिता है तो भी चलो अपने देखनी क्या बात है। तो वहां जाकर मैंने एक प्रश्न किया कि मेरा मूक प्रश्न है मैं बताता नहीं क्या प्रश्न है मेरा मूक प्रश्न है उसका उत्तर मिलना चाहिए। तो भाई भीतर गए जिनके घर में रावण संहिता है वो भीतर से जा वो लिख करके लाए उसमें ये लिखा है कि ये प्रश्न है जो ज्योतिष ने बाहर का है ये ज्योतिष ने बाहर का प्रश्न है ये प्रश्न करना नहीं चाहिए कभी ज्योतिष उत्तर दे सकेगा नहीं इस बात पे इस प्रश्न का उत्तर नहीं बाहर का प्रश्न करना नहीं चाहिए इसे देखो। तो ये बात भी उनकी ठीक निकली अच्छी निकली ऐसे वो जन्म पत्री जो बता देते हैं कि हम आदमी की ये जन्म पत्री है इसका ये फल होगा नतीजा होगा अगर जन्म में ये होगा ऐसा होगा ऐसा होता है। इतना नामी विद्वान था रावण कितनी विलक्षण बात है भविष्य में कौन कौन कैसे होगा कौन प्रश्न करेगा और क्या उत्तर रहेंगे वो मुझसे लिखा हुआ है जैसे भृगु संहिता में है पूरी जन्म पत्री बता देते हैं। तो ऐसा रावण विद्वान था पढ़ा लिखा को कम नहीं था परंतु आचरण अच्छे न होने से उसकी क्या दशा हुई आज लोगों के हृदय में क्या है। दुर्योधन ने राज्य किया महाराज युधिष्ठिर ने वनवास भोगा बड़ी तकलीफ उठाई 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास कितनी कितनी मुसीबतें उठाई है जंगल में रहना युधिष्ठिर महाराज धर्मराज इधर महाराज भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी यज्ञ की देवी से पैदा हुई 7 वर्ष की लड़की पैदा हुई प्रकट हुई है द्रौपदी वो हमारे जैसे मनुष्यों से मनुष्य नहीं थी वो द्रौपदी वहां कष्ट उठा रही है एक कितनी आफत आई उस पर। परंतु वो लोग क्या कहेंगे जैसा क्या होगी आराम से रहेंगे दुख से रहेंगे ये विचार नहीं किया। हमारे यहाँ बड़े भारी दुख की बात है कि संतति निरोध करते हैं जिससे हम सुख रूप हुए यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई वो विषय फल नहीं है केवल विषय भोग के सिवाय कोई तत्व नहीं है इसमें सुख से विषय भोग भोग है इसमें हमारा भारत वर्ष जा रहा है हिंदू संस्कृति जा रही है रोमे क्या करे किसके घर रोमे किस आराम के लिए लोगों की महिमा दूर रही केवल आराम से भोग भोगे और संतान न हो क्योंकि उससे दुख होता है पालन पोषण करना पड़ता है, विद्या देना आदि करना है, संतान शादी आदि करना है, ये कष्ट है। तो कष्ट और दुख भरे आराम देव है, इसमें देश जा रहा है क्या दशा होगी भगवान ही जाने। आज कसौटी ये है कि व्यवहार में बैठे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये नहीं, आपकी दशा क्या होगी और अपने अंतकरण में तुम्हारा विचार कैसा है, वास्तव में धर्म पर हो अधर्म पर हो कैसे हो, फिर सो दिया। इसमें कोई नतीजा अच्छा होगा ये भाई हमारे समझ में आती नहीं। शास्त्रों की बात देखने से, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की बातें सुनने से इसमें नतीजा बढ़िया नहीं होगा। तो लौकिक महिमा के प्रति अपना अपना जीवन सौंप देना, अपने आत्म को भ्रष्ट कर देना, अथवा सुख भोग के लिए अपना जीवन भ्रष्ट कर देना, पापों को कमा देना, नरकों का रास्ता कर देना, कितनी बड़ी भयंकर बात है। परंतु क्या कहें, क्या समझाऊं, अकल नहीं आती है बात। तो ये बात है, दुनियादारी कुछ भी कहे उसमें मतलब क्या निकलेगा। ये तो कहता हुआ ऐसे कहते है, ऐसे कहने लग जाए, ऐसे कहते है, ऐसे कहने लग जाए, कहावत में कोई खास तत्व नहीं है। परंतु कसौटी यही कह रखी है, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे नहीं, हमारी दशा क्या होगी और वर्तमान की स्थिति क्या होगी। दशा का विचार करते हैं ना, वर्तमान की भावों का, वर्तमान के आसनों का विचार करते हैं। तो भाइयों से बहनों से ये कहना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे भीतर हमारे खुद को संतोष होना चाहिए। आप छिपाव करते हो परंतु मन में ऐसा नहीं जानते कि हमारे भी कोई दोष है नहीं, और कोई दोष बताओ तो सजग होकर को देखें और उसको दूर करें। ये तो है मनुष्यता, लोग क्या कहेंगे इस बदलना, ये मनुष्यता नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा ये धर्म नहीं है। लोग अच्छा गए, लोग अच्छा गए, बुरा गए। रावण के राज्य में कहते हैं कि बस रावण वर्ष वर्ती नर नारी स्त्री पुरुष सब उसके वशीभूत थे, वो करता ही होता था। मन सीता जी की चोरी के लिए गया उनको लाने के लिए, तो इत स्वान की ने कुत्ता जैसे देखता है, वस देख उधर देखता है, चित्र में खलबड़ी मच गई है उस रावण की। तो दुराचार करते समय क्या दशा होती है उस खुद की। एक मारवाड़ी कहावत है, एक ने पूछा कि तुम्हारी घोड़ी के ऊंट को पकड़ दो तो क्या दोगे, तो उसने कहा घोड़ी आप ही दे देगी ऊपर हमारे नहीं देगी। घोड़ा और गधा उसकी लात ऐसी खारी होती है, आदमी मर जाए पट मर जाए आदमी, ऐसी जो भी लात लगती है। बलराम जी समय वो गधा गया ना राक्षस बना, राक्षस बुलती पैर पकड़ उठाकर फेंका तार के वृक्ष फल गिर गई हुई पास। तो उनकी दुर्लती बड़ी जोर से होती है, ऐसी मर जाए आदमी ऐसा। तो इस तरह से आज कहते हो हमारे लाभ हो जाएगा, तमाशा देखना कि बाबा जी तिलक अच्छे निकाले, कभी क्या सूखेगा जब उगड़ेगा, कभी तो गीला है, तो ये देखना तमाशा होगा ऐसे। परंतु कुछ देरी लगती है। एक जाट था, उसकी स्त्री बड़ी ऐसी थी कि किसी का आग लगा दी, किसी का भैंस लगा दिया, किसी की भैंस आदि खोदी, बहुत तंग करती थी। उसकी बेटा और पोता खूब अच्छी तरह से खेती में भी अच्छी और गायों भी अच्छी ठीक अच्छे होता है। तो वो जाट कहता था कि भगवान के घर अंधेरा है, घर की बात क्या है कैसे, लोगों से कहते भगवान के अंधेर है, कोई न्याय नहीं है। फिर मरा समय पाकर वो मरने गई, गाय मर गई, भैंस मर गई, बेटा मर गए, तब वो बोला कि अंधेर नहीं है देर है। तत्काल ऐसा करते नहीं होता है, अंधेर नहीं देर है, देर से होगा तो अंधेर नहीं देर है, वास्तव में देर भी नहीं है। पहले का जो पुण्य है वो जब खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उनकी चलेगी। नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माँ पे और करो हजार, चलेगा ठीक है तब तक ठीक रहेगा। अगर वो समाप्त हुआ और ये बारी आएगी तब देखना तमाशा क्या होगा, ये निश्चित बात है। उगरे अंकन हुए भी बाबू, अंत में तो साफ उगड़ेगी बात। तो भाई ये कसौटी नहीं है कि लोग अच्छा कहे वो अच्छा ही होता है, बुरा कहे वो बुरा ही होता है। कहीं ऐसा भी होता है कि अच्छा कहे अच्छा होता है, बुरा कहे बुरा होता है, लेकिन कसौटी नहीं है अपने जीवन की। हमारा जीवन अच्छा है लोग अच्छा कहे तो, और बुरा कहे तो हमारा जीवन बुरा है, ये कसौटी नहीं है। आपका भाव आपका आचरण अगर ठीक है तो लोग चाहे कितनी बुराई करे, लोग समझ ऐसे जा रही दुनियादारी कुछ भी कहो, अपने भगवान से प्रेम है कि नहीं, भगवान में अपनापन है कि नहीं, अगर ये है तो कुछ भी कहो, और ये नहीं है दुनिया सब भला के अच्छा अच्छा कहे तो क्या हो जाएगा, इतिहास बड़ा सुंदर दिखे क्या हो जाएगा उससे। ये बहम है कोरा बहम, और उन्हें वाला कुछ नहीं है उससे। काली करतूत है वो मिटेगी नहीं, वो तो होगी अमिट है, दंड भोगना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों अपने तो अच्छे काम में चलो, अच्छा आसन करो, अच्छे भाव रखो, शास्त्रों की जो बात है उसके अनुसार से अपना जीवन बनाओ। तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो या तो शास्त्र ध्यान हो तुम कर्म कर तुम यहाँ कर्तव्य बोला कर्तव्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र को सामने रखो, ऋषि मुनियों के वचनों को सामने रखो, वेद हो शास्त्र को सामने रखो, अच्छे महात्मा संत किसको आदर देते हैं, ये जगह आचरती श्रेष्ठ तत्व करो जना सही प्रमाण करते लोग करते श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं वैसे ही उनसे कुछ करते हैं, और वे जिसको प्रमाणित कर देते हैं करके न दिखाते कहकर बता देते हैं उसके अनुसार से चलो। या तो आप शास्त्र विधान हो तुम शास्त्र के विधान समझ करके फिर करो तो ठीक रहेगा, उसे वैसे अच्छा नहीं रहेगा। तो अपना आचरण ठीक होना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, वेदों के संत महात्माओं के आचरण के अनुकूल होना चाहिए, संत महात्माओं के वचनों के अनुकूल होना चाहिए। फिर डरो मत, संसार कुछ भी कहे, बुरा कहे भला कहे अच्छा कहे न कहे, ये कसौटी नहीं है। कसौटी तो वही है कि हमारा हृदय कैसा है, ये इज्जत आवाज दिखे चाहे दिखे फिर प्रकट हो जाएगी। अच्छा तो अच्छा भी है ठीक है बुरा जी बुरी, और फिर जन्म भरना हो गए लोगों में कुछ भी नहीं पता लगे अगर हमने काम ठीक किया है तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी सदगति होगी। लोग सबके सब अच्छा कहे महिमा कहे, बड़े बड़े लेख लिख दिए जाए आपके लिए सही सही बड़े सुंदर सलाह लिख दी जाए, परंतु भीतर का भाव गंदा है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ये एक निश्चित बात है। अंत में नतीजा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस वास्ते सज्जनों से भाइयों से बहनों से कहना है कि आप अपने भाव अपना चरित्र अपना सिद्धांत को ठीक रखो, डरो मत दुनिया की बात से, डरो मत राजी भी मत हो, दुनिया ने बहुत महिमा कर दी अच्छा कर दिया इससे राजी भी मत हो। राजी नाराजी क्या बात है, हमारा आसन कैसा है, हमारे भाव कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हम भीतर से करना क्या चाहते हैं और कैसा कर रहे हैं, किस साल में चल रहे हैं, इस बात को देखो और इसका सुधार करते रहो। अपनी शक्ति पूरी लगा करके अपने भाव अपने चरित्रों को सुंदर निर्मल बनाते रहो, फिर भगवान ने दुनिया की अगर दुनिया की परवाह करोगे तो कभी कोई बात ठीक हो जाए ऐसा नियम नहीं। इस वास्ते मन सावधान हो जाए, तस्मात शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित हो, आप ठीक काम कर रहे हैं, दुनिया कोई जाने न जाने परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं, ठीक हो जाएगा। प्राय लोग दूसरों को तरफ सामने रखकर देख देख कर तरफ देख करके सामने रख करके अपना आसन करते हैं, हम दुनिया में बैठे हैं दुनिया क्या कहेगी, ये परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अभी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अपना भाव ठीक है, अपना शरीर ठीक है, अपना संतोष है तो करते जाओ, कोई हर्ज नहीं है। दुनिया दुनिया सबकी सब आपकी निंदा करे तो डरने की जरूरत नहीं है। और आचरण भाव ठीक नहीं है, सबके सब प्रशंसा करे तो क्या फायदा निकलेगा? अंत में तो सोना है तो सोना निकलेगा, अरे कथी है तो कथी निकलेगा। वो चीज एक है वो निकलेगी, कोई बात नहीं। विश्वास से भाइयों से बहनों से कहना है कि अपना भाव अपने चरित्र आचरण ठीक होने चाहिए। शास्त्र कहे उसके अनुसार हो, संत महात्मा कहते हैं उसके अनुसार, भगवान कहते हैं संत आचरण करते हैं उसके अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। न हो सके तो उसे परमात्मा से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, मन में पश्चाताप करो, उस लगन लगाओ कि ना ठीक हो। तो ठीक होने के लिए सब साधक है, सब ये आपके सहायक है। भगवान सहायक है, संत सहायक है, दुनिया सहायक है। दुनिया आजकल के जमाने में गया गुजरा एक जमाना है जो कि ठीक ठीक तरह से नहीं चल रहा है। ऐसे समुदाय में भी आप ठीक करोगे तो आपकी बेटी नहीं होगा, और कहीं बेटी देख भी जाए तो ठहरेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। एक सिद्धांत की बात है कि झूठी महिमा झूठी प्रशंसा हो जाए, झूठा आदर हो जाए और धन मिलकर संपत्ति हो जाए तो वो तो नष्ट होने वाली है। और दरिद्रता आ रही है, निंदा हो रही है, तिरस्कार अपमान हमारा हो रहा है, और हम अपने बात पर ठीक है तो हमारे कोई हर्ज नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर द्रौपदी और भीम से इनको भी कह गए। द्रौपदी ने कहा अच्छा क्षमा में निरस्त विक्रमाचराय पर यही से सुख से साधनम विहाय लक्ष्मी लक्ष्म कारुकम चटाधर संजोधी पापकम। कहा महाराज आप क्षमा क्षमा करते हो और क्षमा ही आपकी बात में है, अपने माफी करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अच्छा क्षमा में वो निरस्त विक्रम और पराक्रम करते नहीं और क्षमा करते हो, ऐसे क्षमा को ही ठीक समझते हो तो ये लक्ष्मी नाथ के चिन्ह वाला धनुष इसको तो छोड़ो और लंगोटी लगा जनरल में बैठ जाओ और जटा धारण करके और झूनी लगा लो और बाबा जी बन जाओ। जटाधर संजोधी पावकम ऐसे कहा द्रौपदी ने। राजाओं का क्षमा करना काम ज्यादा हुआ धर्म नहीं है, राजाओं का तो नीति के अनुसार चलना ठीक तरह से है। आप राजा और ऐसे विचार करते हो तो बाबा जी बन जाओ, तो राजा कोई सफा नहीं देता। इसके ऊपर भीम से ने कहा है, उन्होंने कहा कि महाराज अब नम वक्त विशेष निष्पिया गुण गैया बसने विपस्त। अच्छे विद्वान होते हैं वो वक्त विशेष निष्पिया, कौन कह रहा है ये नहीं देख रहे हैं, क्या कह रहा है ये देखते हैं। ऐसा मत समझा कि स्त्री क्या कह रही है, स्त्री पुरुष को देखना नहीं है, क्या कह रही है ये देखो, कौन कह रहा है देखने जरूरत नहीं। ये बात ठीक है, और 13 वर्ष आपने कहा है आपत्ति में एक दिन भी वर्ष जैसा हुआ है तो 13 महीना होने पर अपने से पैसा करो, अपना राज्य दे लो। ये बात है, 12 वर्ष हो गए, आपत्ति में थोड़ा समय भी बहुत लंबा होता है, 13 वर्ष क्या जरूरत है अपने करने की। ऐसे भीमसेन ने कहा, अनुमोदन किया द्रौपदी की वचनों का। युधिष्ठिर जी बोले से, फिर आज ऐसा विचार है तो तुम जाओ करो, मैं तो 13 वर्ष बिताऊंगा और तुम्हारे साथ साथ अपने भाइयों को ले जाओ, तुम करो राज। भीमसेन चुप हो गया। भीमसेन मैं अपने राज्य के लिए थोड़ी कहता हूँ कि मेरे को राज्य मिले, ये मेरा है ही नहीं था। लज्जित हो गया, चुप हो गया। उसी समय में वही अपने धर्म का पालन किया। लोगों ने कहा देखो मूर्ख है, बेसमझ है, कितनी निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, द्रौपदी का कितना अपमान हुआ। वो राजसभा भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े विद्वान और बड़े शूरवीर बड़े नामी संसार में प्रसिद्ध ऐसे महापुरुष थे, उनके सामने द्रौपदी का कितना तिरस्कार किया। दुर्योधन कहता है इसको नंगी कर दो, क्योंकि कहा ये हंसी है जिस समय दुर्योधन गया है उस सभा में दानों की दी हुई मैदानों की दी हुई सभा थी। उस सभा में गया तो जो देश लगता उसको उल्टा दिखता था, दरवाजे दीवार दिखती दीवार की जगह दरवाजा दिखता था। तो पहले तो सिर में लगी दीवार की दरवाजा दिखता है कैसे, तब दरबार ने ये दरवाजा इधर से पाला रो इधर से गए रोक दिया बैठी थी ऊपर वहां दिखा तो पानी दिखा तो बाबा ऊंचा रह गया ऐसे अगर जल था उसमें डूबी हंसे तो रोक दिया हंसी ऊपर अंध सुता के अंध पिता के अंध सुत भाषो कटु इम भीम भारत कुल गर्द भय और आई विपत असीम असीम अंध पिता के अंध सुत अंधों को तो अंध ही है भीम से बोल गया इसलिए चुप रहे क्या बोलता बोल दिया बोल ही दिया निकल गया रोक दी हंसी इस बात भीमसेन पर और द्रौपदी पर बहुत इसकी गुस्सा था मन में तो द्रौपदी था तो कैसे द्रौपदी को लगन कर दो अंध पिता अंधे होते तो अंधों की सभा अंधी सभा लाज किस बात की कब हम लगन इसको कितना अपमान किया महाराज जैसे मरा हुआ कुत्ता उसको घसीटते है ऐसे केस पकड़ के गिरा दिया घसीटा सभा में ऐसे आदमी सभा में आज कोई स्त्री को तंग करता हो तो महाराज ये साधारण आदमी इनका खून उबल जाए क्या कर रहा है अबला का संस्कार कर रहा है स्त्री का स्त्री बच्चों को ख्याल नहीं करता है आज आज ये साधारण हम लोग आदमी है ये नहीं सास करेंगे ऐसे थे कितना संस्कार हुआ अपमान हुआ कितना हुआ लोग देखिए कितने दशा है बहनों को ख्याल करना चाहिए उनका तिरस्कार किया भेज दिया तो गांधारी ने जाकर धृष्टता को कहा कितनी ऊंची दर्जे की पति बता कि जो सुख पतिदेव को नहीं है नेत्रों का वो नेत्रों के रहते वो मैं सुख नहीं दूंगी सूर्य देखो तो भारतवर्ष की कन्याओं की लड़कियों की एक वो बड़ी बूढ़ी नहीं थी ब्याह उसे पहले ही कह दिया उसे अंधा है तो अपने आंखों को पट्टी बांध ली आंखें सुख मैं नहीं लूंगी हमारे पतिदेव को ये सुख नहीं मिलता वो सुख मैं नहीं लूंगी जान करके पट्टी बांध के ऐसी ऊंचे दर्जे की पति बरसात की गांधारी उसने धृतराष्ट्र से जाकर कहा है इससे सिद्ध क्या होता है कि अस्थि बात स्त्री को भी कहने का अधिकार है ऐसी पति बरसा वो भी कह रही कर क्या रहे हो आप इन पांडवों को निकाल दिया और फिर जुआ में हरा करके फिर इनको छुट्टी दे दी हो जाएगा दुर्योधन ने कहा द्रौपदी ने वो बात की गांधारी ने कहा कि आप समझते नहीं हो द्रौपदी को नहीं पति बता एक शब्द कह देगी इसमें सबको भसम हो जाना पड़ेगा उसको क्या तिरस्कार करते आप समझते नहीं हो तब द्रौपदी को बुलाया कि बेटी तुम क्षमा कर तुम वरदान मांग रहे हमारे से कि हमारे पांच जो ये पति इनको कोई दास न कहे और इससे पैदा होने को दासी दास पुत्र रखे हैं इतना कर दो और इनको छुट्टी दे दो ये अपने घर चले जाए छुट्टी दे दी धृतराष्ट्र ने गांधारी के फटकारने धमकाने से दे दिया अब दुर्योधन आकर पीछे जाने लगे दुर्योधन आकर पीछे पड़ा कि महाराज इनको गजब कर दिया आपने सांप को पूंछड़ी पर पैर रख करके छिड़ा कर फिर छोड़ देना अब इनको इतना अपमान किया छोड़ा क्या करेंगे ये तो सब भस्म करने नाश कर देंगे ऐसे स्कूल भी है तो क्या करोगे राजी करो तो द्रौपदी को राजी किया और फिर इनको कहा बुलाओ पीछे उनको बुलाए बुलाकर कहा जुआ खेलो फिर दुर्योधन कहा कब खेल खेलाओ तो 12 वर्ष हुआ वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास इस शर्त पर उनको छुड़ाकर सब राजी ले लिया तो इसे भोग लिया उन्होंने कहा ठीक है कपट से किया उसको भी सह लिया युधिष्ठिर महाराज ने तो आज से सज्जनों के हृदय में युधिष्ठिर राज कर रहा है दुर्योधन की करतूत पर छूक देंगे वो कोई बढ़िया मानते हैं उसको उसकी दुष्टता प्रसिद्ध है तो भाई उग्र अंतर हो यदि बाहू कार ने मुझे रावण रहा हूँ लोग कहते तो क्या हो गया आप बता दी तो क्या हो गया सुख भोगी तो क्या हो गया अन्याय पूर्व सुख हो राज्य किया उसने द्रौपदी के मन में संदेह हो गया वन पर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज से कहती है कि महाराज कोई न्याय है कि नहीं, शास्त्र में धर्म अधर्म का कुछ विचार है कि नहीं, ईश्वर को है कि नहीं। आप धर्म को छोड़कर एक पैर नहीं रखते, वे तो जंगलों में दुख पा रहे हैं, फल मूल पर आपस निर्वाह कर रहे हो, अन्न नहीं मिलता है भगत पर, दुर्योधन इन बातों की परवाह न करके अन्याय कर रहा है, वो राज्य कर रहा है, ये कोई न्याय है, ये कोई धर्म है? ऐसी व्यवस्था भगवान करते, वो भगवान है कि नहीं है, क्या है ये? किसी से माया ने कहा कि दीदी तेरे मन में ये शंका कैसे हुई? तू जानकार है, उसके मन में शंका कैसे हुई कि महाराज प्रत्यक्ष देखती हूँ मैं कि दशा क्या हो रही है? आप इतना ख्याल रखते हैं न्याय का, धर्म का, सत्य का, जिससे इधर नहीं होते, अगर वो परवाह ही नहीं करता है तो वो तो करता है राज्य, आप भटकते हो दर दर, रहने की जगह नहीं है, रहने की राजा राजा थे, राजा सही हो रही है, और इसने इतने बलवान ये आपके भाई एक संसार पर विजय कर रहा, जैसे जैसे भाई आपके ऐसा होने पर भी आप है देखो। तो आज देखो किसकी करतूत है, कैसे कितना ही कुछ कर रहे, क्या हो जाएगा अंत में? ठीक ही होगा। तो लोगों पर और अपने आराम पर कोई विचार नहीं किया, इसी ऐसे आज नहीं माने धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, इसी का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, कितनी विचित्र बात है। उनको याद करने में ऐसे हृदय शुद्ध होता है, लोग जी कुंती को याद करने से हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तब दुर्योधन की याद करने से होता है, दुष्टाचर की याद में शकुनी से इनके याद करने से होता है। पांडव ये सिंधु चंद्रिका एक भाषा का काव्य है, मैंने पढ़ा है, उसमें चारों का नाम किया है, दुर्योधन दुष्टाचर शकुनी और कर्ण, चंडाल चौकड़ी का है, चंडाल चौकड़ी थी चारू चंडाल, चंडाल चौकड़ी का है, चंडाल चौकड़ी थी चारू चंडाल। इनमें भी कर्ण का नाम मैंने नहीं हुआ, तीन नाम लिए, कर्ण का नाम क्यों लिया? कर्ण वो उनके सामने कहता रहे कपट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, इससे राज्य मिल जाएगा, लाका ग्रह में चला दो, ये कर दो, बनास दे दो, ये नहीं, आओ सामने युद्ध करो, हम आपके साथ हैं, युद्ध करें, फिर बराबरी हो जाए, विजय हो जाए, कोई बड़ा नहीं, परंतु कपट करना और कपट से उनको विराजित करना, ये बात न्याय की नहीं है। कर्ण कैसा रहा? उनमें कर्ण ही कैसा रहा? साथ तो मिला हुआ था और उनके साथ बड़ी ईर्ष्या थी, परंतु ये कैसा रहा? और ये कपट के मारा इन शकुन सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, ये ठीक होगा, क्या दशा होगी? इन बातों से कोई कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं है, संसार में भी इसका नाम हो जाए, ठीक हो जाए, ये बात नहीं है। प्रत्यक्ष में चाहे थोड़ा सुख मिल जाए, परंतु फिर दर्द दशा दुर्दशा ही होगी, इसमें संदेह नहीं। इस बात दुनिया कहे न कहे, भला माने बुरा माने, कैसे ही कहे, तो ये विचार भी होना चाहिए कि हमारा आसन कैसा है, हमारा भाव कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, इस बात पर विचार करके शुद्ध भाव रखो, शुद्ध चरित्र रखो, शुद्ध आचरण करो, शास्त्र के अनुसार, ऋषि मुनियों के वचनों के अनुसार, संत महात्माओं के सिद्धांत के अनुसार पवित्र आचरण करो, देखो पवित्रता, फिर आपकी विजय है, इसमें संदेह नहीं है। अभी नदी के नदी गए, नदी नष्ट क्या हो गया, दिखेगा अंत में, कभी उगरे ही अंतर हो गए बाबू, अंत में उगा उगड़ेगी चीज। इस बात से दुनिया कहे न कहे, माने न माने, जाने न जाने, भरत जी महाराज कहते हैं जाने राम कुटिल कर मोहि, राम जी में कुटिल जाने कुटिल है भरत जी, जाने राम कुटिल कर मोहि, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, ये गुरुजनों का द्रोही है भरत जी, ऐसी दशा हो तो भी सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, प्रयागराज से कह रहे हैं सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, कितनी बड़ी बात है। राम जी भी कुछ समझे कोई परवाह नहीं, लोग सब निंदा करे कोई परवाह नहीं, मेरा तो चित्त भगवान में रहे, लोग अच्छा गए मंदिर जी, क्या कह रहे मैं लोगों से, कहे तो कहते रहे, निंदा करे निंदा करते रहे, दुख पाओ दुख पाओ होते रहे। प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भेन नीचे ही, नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं अच्छे काम का आरंभ नहीं करते, क्यों विघ्न हो गए से ऐसी बहुत विघ्न आने कल्याणकारी कामों में कई तरह के विघ्न होते हैं, तो विघ्न भय से अच्छा काम आरंभ ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते। प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भेन नीचे ही, नीच पुरुष होते हैं ये डरते हैं भय से, और मध्यम दर्जे के होते हैं आरम्भ तो कर देते हैं परंतु विघ्न आता है बाधा आती तो छोड़ देते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहता विहता निर्मंती मध्या आरम्भ कर छोड़ दे, पर उत्तम पुरुष ये है कि विघ्न ही पुनः पुनः रूपी हंसने वाला बार बार विघ्नों की चोट आती रहे, दुख आता रहे। प्रारब्ध से उत्तम जना न प्रति, हमारा काम ठीक है, शास्त्र अनुमोदित है, संत महात्मा अनुमोदित है, और हम भी विचार करते ठीक है, तो फिर कितनी आफत आ रही नहीं, पुनः पुनः रूपये हंसने माना विघ्नों की चोट आती है आती है, चोट हम काम ठीक करेंगे। आदि का वर्णन युधिष्ठिर के पास किया था, सत्य और धर्म शायरी के पास ये बल था, और तो सेना में भी बल था जिसमें कम कर दिया इसका, वो क्यों को सेना युद्ध ने ले ली, नौ नौ थी दो ले ली, दो लेने से उनके चार अक्षर यदि बढ़ गई, दो घट गई दो बढ़ गई, जब चार पड़ गए नहीं तो ग्यारह अक्षरणी इनकी सात अक्षरणी बाजे बजे तो गीता माया सरगोटो धार त्राटा में हरियाणी बजारी, जब दुर्योधन की सेना के बाजे बजे तो उनका पांडवों पर असर नहीं पड़ा, सशब्द स्तुमलो बड़ा भयंकर शब्द हुआ, परंतु जो पांडवों के बाजे बजे है घोषो धारियाम तो वही हुआ, वो भी हुआ, पंचायत संबंध हृदय चीरा गया है, ऐसी पीड़ा हो गई है, दहन गया हृदय, क्योंकि धर्म का पक्ष नहीं, पक्ष पाप का था, पक्ष जिसके पाप का होता है उसका हृदय कमजोर होता है, जिसका धर्म का पक्ष होता है हृदय बलवान होता है, कोई बलवान नहीं आवे आफत आ जाए कोई कुछ परवाह नहीं है, वे मजबूत होते हैं भीतर में, क्योंकि हृदय कमजोर नहीं होता, वो किसी न्याय पर है ठीक पर है नहीं पर है, आजा तो आ जाए आफत आ जाए कोई परवाह नहीं, भूल नहीं, ऐसा हृदय होता है, पाप जैसे हृदय में नहीं होता तो हृदय का बल होता है, भीतर का बल होता है, विलक्षणता होती है, धैर्य होता है। पांडवों के हृदय कैसा था, युधिष्ठिर महाराज के हृदय कितना बलवान है, कोई बलवान नहीं, लोग तिरस्कार करो अपमान करो निंदा करो कुछ भी करो, दुर्योधन कुछ भी हमारे पर अत्याचार करे, हमने सुना है कि दुर्योधन नहीं कहते थे युधिष्ठिर महाराज सुयोधन कहते थे, दुर्योधन शब्द कर रहा होता सुयोधन, ठीक है कितना विचार रखते थे, वो भी अगर सलाह पूछे तो उसकी अच्छी सलाह देते थे, ऐसे महाराज जीते थे, उस समय तो दुख रहा कष्ट उठाया, 13 वर्ष तक राजा राज्य करने वाले 13 वर्ष रहे, 12 वर्ष जंगल में रहे, हाथों से कुटिया बनाकर फूस आदि इकट्ठा कर लकड़ियां इकट्ठी कर बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, उस समय कितनी कष्ट उठाती है, लकड़ियां लाती जंगल में से लकड़ियां तोड़ कर लाती है रसोई बनाती है, कितना कष्ट रहा, 12 वर्ष रहे 1 वर्ष रहे अज्ञातवास में, कितना कष्ट उठाया, स्वयं ध्यान मत्स्यराज हो रहे घृष्टन की चंदन चंदन की स्थिति थी, स्वयं जी बनी हुई उनकी सेवा करती थी रानियों की, कितनी विलक्षण बात, इतने पर भी किसे कितना दुख देता था, कितना कष्ट दिया मैंने, वो अगर एक शब्द कहे तो उसे भस्म कर दे वो, परंतु द्रौपदी की बात तो बहुत विलक्षण, इतना तपोबल था उसके पास में, इतनी शक्ति थी, दरिद्रता कर दिया गया, किसी ने इतना तिरस्कार किया, इतना कष्ट सहा, और वो इतना कष्ट दिया, परंतु फिर कभी एक जबान नहीं कही, इतना बल होते हुए भी उस बल को पचा गई, सब शक्ति को पचा गई, कुछ लिखा, संकेत मिल गया था। जब किसी के वहां गई है, किसी की बहन सुदेशना ने भेज दिया जाओ मजरा ले आओ, वो गई है वहां पर, किसी ने कहा भीतर आओ, कहने भीतर नहीं आऊंगी, तुम्हारी बहन ने मजरा मंगाई है तो भेज दो, जाओ तो नहीं दो तो मैं जाती हूँ, मैं भीतर ही आऊंगी। चल पड़ी वो, युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट बने हुए राजा विराट के साथ चौपड़ खेल रहे थे, वहां पास में आए, वो पीछे से आया, लात मारी, लोग देखे लात मारी, उसने कहा कि जो आप इतने बैठे हो और मेरे पदार्थ को लात मार रहे, मैंने क्या अपराध किया, क्या ओगुण किया, मैंने लात मार रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा कि जो पति प्रताय होती है अपने तेज से रक्षा कर लेती है, तो आज्ञा तो दे दी, आज्ञा हो गई। वो अपने आप अपने रक्षा कर देती है, उसके लिए कोई किसी की दूसरे की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको खुद को तेज है, बल है, जो भी काम में नहीं लिया। युधिष्ठिर से तो निराश हो गई। रात्रि में वो पहुंची है आधी रात को भीमसेन के पास, वो रसोईया जहाँ सोता था ना, भीमसेन वल्लभ रसोईया, वल्लभ नाम का रसोईया थे, ये रसोई में अपना काम किया तो मैं रसोई बनाऊंगा, तू ज्यादा भोजन करता था तो रसोई भी खुला है, कितना ही खाओ और काम ही रहता, वही खाओ उसने लिया, वल्लभ रसोईया बना रात्रि में, अलग अलग गया और भीम से बोला कि की तू कैसे आई रात्रि के समय, कैसे आ गई, नींद नहीं आ रही तेरे को, रोने लगी, कहा कि नींद का समय है, युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े राजा थे, राजा लोग उनकी आंखों को तरफ देखते, राजा नाराज है, राजा है वो आज कंक भट्ट को, भट्ट को राजी, कंक भट्ट बने हुए राजा को राजी करने के लिए कहा, ये है विराट महाराज पांडवों के राज्य में ही थे, तो बड़े राजा थे ये, तो आपने माते राजा से नौकरी कर रहे हैं। अर्जुन जो कि बड़े बड़े सूर्यों को बाणों की शिक्षा देते थे, वो आज छोरियों को पढ़ाते हैं, कहाँ वगैरह सिखाते हैं, हम पता नहीं है, उनके हाथ थे जिन हाथों में धनुष बाण चलाते थे, ऐसे ऐसे धनुष चलाया तो धनुष की पत्तियां ऐसे लगती थी, यहाँ जैसे हथेड़ी जैसा यहाँ का हो गया था, हाथ ऊपर गए, उनके ऊपर आज सूर्य उतरने के लिए सूर्य चंद्रमा के ऊपर ग्रहण आ जाए, इस तरह से दशा हो रही है। नकुल सहदेव मेरी सास के प्यारे पुत्र घोड़ा और गायों के बीच दौड़ते बैठे जंगल में, और आप सूर्यदेव को रक्षा देते, शिक्षा कुश्ती में सबको पसारते थे, आज बैठे खुल के बोलते हैं बैठे, नींद नहीं आवे, नींद आवे समय ही इतने पर कीचे इसने तंग कर रहा, मेरे को बहुत ऐसा कर रहा है, अब किसको कहूं, किसी महाराज बात कह दी, कोई और सुनने वाला है नहीं, घबरा मत, आज फिर समझ गया कि तो मर गया, अब जीता नहीं है, जीतता है जीता, खत्म हो गया, आज वो जीता जी गया, जीना है जी गया, जी खत्म होगी, उसका जीवन अब नहीं रहेगा, तुम जा आराम कर, सब कर दूंगा मैं ठीक, इतना तुम काम करना, कल दिन में उसे कह देना कि रात्रि में वहां आ जाओ, देना संकेत, जहाँ दिन में ब्रह्मनला बना हुआ राम अर्जुन लड़कियों को सिखाता है गाना बजाना, वो विद्यालय खुला रहता है, रात्रि में सुन रहती है, तो कह देना कि रात में वहां आ जाओ, किसको कह देना, मैं सब देख लूंगा, तू कह देना इतना, किसी को कह दिया किसी को फूला नहीं समझेगा, उसकी मौज होगी, ये तो मिल ही गई हमारे को, रात को आ जाना, वो भीमसेन पहले जाकर के सो गया, अंधेरा था, जा देखा उसने, चीज देखा तो हमारे लोह डंडे की तरह हाथ, ये क्या बात है, मतलब कौन है, कौन गए बढ़िए महाराज, तो पसार करके और ऐसा किया कि हाथ और पांव और माथा ये बीच में ही खोस हो गए, एक थेला बन गया, थेला बिल्कुल सही थेला, हाथ और पांव ऐसे ऐसे भीतर डाल दिए, ऐसा थेला बनाकर ऐसा थंबा थंबा उठा, थंबा नीचे गाड़ दिया, दबा दिया। सुबह पता लगा कितनी दशा हुई है, तो किसी के 100 भाई थे, 100 ये बड़े बलवान थे सभी से, किसी बहुत नामी था बल में। बात हुई तो दुर्योधन ने कहा कि बल में 4 आदमी है, एक कृषक है, एक भीमसेन है, एक बलराम जी है, एक महाराज वर्ष जी। ऐसा कोई दूसरे ऐसा बलवान है नहीं दूसरा कोई, तो ये घटना घटी तो कोई ना कोई इंसानों में से है वहां, नहीं तो कैसे होता है। इसलिए किसी को नाश कर दिया, इसलिए है बलराम जी है, शल्य है, ये है रूप भी किसे कैसा है उसकी तो कर दिया ही, कोई ना कोई है बलवान है वहाँ। इस बल से पता लगाया कि वहाँ कोई ना कोई बलवान ऐसा है, चारों के सिवाय कोई बलवान नहीं है, किसी को उसने कर दे तो तीन ही है आदमी बलवान शरीर में, ऐसी के साथ उसकी तीन ऐसा कर दिया। और सुबह हुआ उनको पता लगा, सबने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला वहां से और मसान की तरफ जाने लगे, तो जा दो तो कहते ये जो शैलेंद्री है इसके कारण से मारा गया ही। तो शैलेंद्री को साथ बहादुर मंग रह गया, इसको सती कर दो, सती पकड़ ले गया। वो पुकारने लगी कि भाई कोई रक्षा करो, मेरे को जलाने के लिए जा रहे हैं। भीमसेन से सुना, भीमसेन वहां गया, उसमें संदेश मिल गया, प्राकार जैसे पुरानी बाढ़ और सूर भीतर में निकल गया, इससे इसके भीतर भीतर निकल गया। वहां मसाला मंगवाई तराई थी जिसमें पहले कादा था, वहां जाकर उसमें सब शेर के कादा में पेट गया, कादा लगा कर करदम। और एक ताड़ का वृक्ष था बड़ा, उस ताड़ के वृक्ष उखाड़ दे दिया कंधे पर, कमजोर से किलकारी गई तो लोग रह गए। वहां गया यक्ष है इनकी रक्षा करने वाले, शैलेंद्र ने कह दिया मेरी रक्षा करने वाले 5 है, आप क्या समझते हो। वो चिता भलाई और द्रौपदी को भीतर रख देंगे, साथ साथ ही मार देंगे। कब वो किलकारी करी, ऐसा गया इधर से द्रौपदी नीचे आएगी उठ करके, तब उनको एक एक को मारे, सितम फेंक चिता जल गई, सितम फेंक सर 100 के 100 को पा दिया। तो वो चाड़ का वृक्ष मारे ही जिसमें कड़ावे पड़ जाए, सबको उठा उठा टांगे फेंगे, सीता में 100 को 100 खत्म कर दिया। ये जो बात सुनी लोगों ने, वहां से आए भीतर भीमसेन आने लगा, वो द्रौपदी आने लगी, द्रौपदी भीमसेन तो गुप्त रहा, वो प्रकट हुआ नहीं, विजय स्नान कर साफ रख जा बनाते। द्रौपदी आई तो द्रौपदी देखते कोई तो वही हो जाते हैं, छोटी बहू पुराने जमाने में हो जाती, आज की नहीं कहता निर्णय चिता की कहने की बात है हमारे, तो वो लज्जा करते थे। ऐसे पुरुष कोई बात ही हो जाए, कभी दृष्टि पर किसी की दशा हो, इस पर दशा पड़ जाए कि दृष्टि सब हो जाते। गई जनवार समय वह राजा ने कह दिया अपनी रानी से कि इसको यहाँ से शैलेंद्र जी को विदा कर दो, कभी मेरी दृष्टि पड़ गई तो क्या दशा होगी, मर जाएंगे हम, किस डरेंगे वो तो यक्ष ऐसे है। द्रौपदी ने कहा मेरा समय होने से पहले मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो फिर दशा यही होगी तुम्हारी। मैं यही हूँ, वे धर्मात्मा होते दृष्टि खराब नहीं होती, उससे वे नाराज नहीं होते, मेरे पर खराब दृष्टि करने से दशा होती है वो, आपको निश्चय करो आपको उसने बिगड़ेगा, आश्वासन दिया। लगी कांपने लगे लोग कि इनको तब देख ले, बहुत सुंदर थी द्रौपदी, यज्ञ की भेदी से पैदा हुई कोई रजीजी थोड़ी पैदा हुई थी, वो ऐसी सुंदर विलक्षण देवी थी, उसका वर्णन आता बड़ा सुंदर रूप वर्णन आता। तो वही रही, सब लोग डर गए, द्रौपदी की तरफ देखा तो दशा यही होगी, ढाक बैठी उसकी, कोई देखता नहीं, कोई हिस्सा नहीं। इतने बलवान ने कितना कष्ट सहा, द्रौपदी ने अपने धर्म को काम में नहीं लिया, अपनी शक्ति को काम में नहीं लिया। परंतु वो शैलेंद्र मत्स्य राजभवन ग्रस्त में चंदन घिसता भी काम करती थी, सुदेश न जो थी विराट की रानी उसके सामने देखती थी ये महारानी नाराज न हो जाए, जो राजरानी है वो समय पूरा होने पर ये जाकर बैठ गए सिंगार वहां पर जिसे को सभी। अब समय पूरा हो गया, 13 वर्ष पूरा हो गया, तो गिरास ने बहुत प्रार्थना करी, पता लगा कौन है कैसे है। बहुत विलक्षण बात हुई, गोवर्ण करने के लिए गए, ऐसी दशा सुनी की से गिरी और ऐसे बातें सुने तो जितने गुप्तचर थे खोज में निकले सब इकट्ठे हो गए और कहा हमारे पता नहीं लगा कहाँ है पांडव। तो विष्णु वहां का यत्र यादा विष्णु होंगे, अकाल नहीं पड़ेगा, पिता के रहते बेटा नहीं मरेगा, वहाँ गायों बहुत दूध वाली होगी, खेती वहाँ अच्छी पकेगी, यत्र यादा विश्व जहाँ विश्व है वहाँ देश में ऐसा होगा, गौ बड़ी भरी हो जाएगी दूध देने वाली, इन गोबर तो बढ़ेगा इस राज्य में। तो ऐसा तो अभी विराट का है तो मैं चलू, तो सुषमा पहले दिन जा करके गोवर्ण किया, दूसरे दिन ये गए भीष्म और द्रोण और ये भी साथ में थे, कौन है भीष्म दुर्योधन प्रसंग है ना, भीष्म को हरने का था भीष्म जी गई हरण करने के लिए, साथ में दुर्योधन का गोवर्ण किया। उस समय में वो ग्वाले आकर कहने लगे साहब कौरव है उनकी सेना है बहुत बहुत बड़ी सेना, वो लेकर आए हैं गायों को ले जा रहे हैं। तो उत्तर कौन बैठा था उत्तर विराट का कौन, वो कहते क्या करूं कल युद्ध हुआ सुषमा साथ मेरा सारथी मारा गया, कोई सारथ नहीं है, सारथ हो तो मैं बात करूँ इसी शहर में, हमारे को पांडव सुन दिया कौरव ने तीसरे तिरस्कार करते हैं, मैं बात करूँ सिखाऊ पर करूँ क्या, मेरे सारथी नहीं है। द्रौपदी जी फैमिली बनी, उसने कहा ये ब्रह्मदा है ना ये बहुत अच्छा चलाते आता सारथ की किया, अर्जुन करना चाहता है इसने, अर्जुन कोई नहीं अर्जुन रसोई नहीं आता है, अर्जुन का रथ आता है रथ की चलाने में, अब क्यों चलेंगे हाँ रथ में चला लूंगी अच्छे तरह से आप मन के बैठ गए वहां पर चलाया चला रथ स्वामी ने देखे कौर समुद्र की तरफ बड़ी सेना पड़ी है, कहते भाई मेरे पीछा लौटा रथ को पीछा ले गए भस्म कर देंगे मेरे साथ, मैं एक क्या करूंगा, कहते डरना नहीं चाहिए चलो। तो उसे कूद कर भागा तो अर्जुन पीछ कैसे दिखा हुआ ऐसे भागा, वो चारों तरफ समान भागते थे, इधर भागना इधर भागना इधर पीछे भागना बरोबर दौड़ लगाता था, लेकिन पकड़ जाएंगे भैया मेरे से युद्ध नहीं होता, कि तुम युद्ध करने की बात नहीं, युद्ध की तुम बैठ जाओ मैं बैठ जाऊँ रथ में मैं करूँगा, तू युद्ध क्या करे हिंदरा कि मैं हिंदरा नहीं हिंदरा मैं क्या करूँगा। फिर ऐसा सोचने लिए वो समय वृक्ष नीचे लटकाया मुर्दा था, वो मुर्दा बनाया उसमें अस्त्र शस्त्र से उसे जाल दिखा देखो ये भीम से निकलता है ये गांधी अर्जुन का है, अरे भीम से ये है अभी कहना नहीं थोड़ा समय बाकी अभी भी कहना प्रकट मत करना, अरे वो अर्जुन हूँ मैं तू बस जा रहा थी रथ चला युद्ध में करूंगा। अब बैठा जो चलाया रथ तो पीछे वो स्त्री का भेद दान किया था अर्जुन ब्रंदला बनाया ना स्त्री का वो ना वैसे श्रृंगार कैसे था वो, तो देखा कि बीच में रथ में तो एक स्त्री बैठी है आगे चला रहा है उत्तर कुंवर, तो दुर्योधन से संधि करने के लिए अपने बहन उत्तरा को लेकर ये उत्तर कुंवर आ रहा है कि हम देते हैं संधि कर लो ब्याह करेंगे, ये बात है इसलिए ऐसा मुश्किल हो गया तो भागदन सही गली नहीं गई कौन है जानते हो, ये सब मेरा घर कीर्टी जीतवा जिगावा की है सामने आया तो बाण छोड़े महाराज भीष्म और द्रोण के चरणों में बाण मारे खास करके चरणों में बाण मार के दो बाण ऐसे सरसराट करते गए उस बाण के ऊपर नमस्कार किया कानक पास के पिताजी गुरु जी दादाजी मैं युद्ध करूँ मेरे को हुक्म हो जाए आज्ञा हो जाए फिर नमस्कार किया फिर बाणों से आज्ञा मांगी ऊपर हाथ दिया हाँ हाँ करो युद्ध में ऐसा गया कर्ण भाग गया उसने सामने नहीं जगा भाग गया ऐसे कई जगह कर्ण भाग जाता है तो मेरे मन में कारण क्या था, उदासी का दूध पिया उदासी का, अरे बस कुंती का दूध पीता तो भागता कर कितने कृष्ण पाती हूँ भाग जाता। सूर्य मामूली नहीं था, कर्ण बहुत सूर्य का साथ साथ पुत्र था, क्षत्रिय वंश सूर्य वंश चंद्र वंश उनके खास महाराज जी कह दो ऐसा दुध सड़ा संघ बजाया जोर से, संघ बजाया गुस्सर को भी मूर्छा कान खेस ठीक किया, डंडा पकड़ लेगा कहता था दुध ऐसे करो पड़वा में प्रसन्न करे करवा पण केती करे पण धारा में दसंत आसू आवे दुध में आवे तो पता लगे वहां दशे की बाजार था मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। हमारे को पांडु भी समझ लिया क्या करो ने कब देखो तुम ऐसा ऐसा घमासान युद्ध किया महाराज। फिर समूह ना तो छोड़ा वो सिद्ध कर दिया सबको। उत्तरा ने कहा कि भैया तुम जाओ ना तो राजाओं की पगड़ी होती, इस पगड़ी पर जो कलाबा लगा हुआ था सोने का चिल्ला पर वो लेना, मैं गुड़िया खेलूंगी। अब पुत्र को कहा खेल रहा हूँ भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य आदि के पास मत जाना, नहीं तो खल खत्म कर देंगे। तो मेरी असल की महिमा समझ करके अभी मुझसे जो पड़े हैं और सब मुर्दा है कोई बात ले आओ। ऐसी बात तो देखो धर्मात्मा थे, इतने का कष्ट सहा, कितना कष्ट सहा, कितना अपमान सहा सभी, पर आज देख लो क्या है, युद्ध में राज्य किया क्या है। इस बात से कुछ भी हो अपना ठीक होना चाहिए। नारायण 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 थोड़ा कीर्तन कर दे भाई, समय हो गया।
गोविंद हरे गोपाल हरे गो जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय